When I've been going to Govardhan today, yes, about 8,
yes.
I want to visit Kaliyada.
Yes.
Better you should be there.
8 o'clock.
Yes.
Yes. I will be there.
हम लोगों का पर्व सौभाग्य का दिन था जिस गौर संप्रदाय में हम लोग आए हैं, जिसको रूपानी को बोल करके जिस गौर संप्रदाय अपना को बड़ी सौभाग्य मानते हैं। हम लोग 3 दिन तक केवल एक विषय पर भक्तों को उधार बिंद से उनका विधीर्ण दृष्टिकोण के द्वारा कैसे हमारा संप्रदाय विशेष विशेष महत्व है, हम लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया है। समझिए हम लोग परम सौभाग्यवान हैं जो कि श्रील महाराज जी को पास में आए। मुझे लगता है कहीं के विश्व में विश्व की बात छोड़कर संपूर्ण शायद किसी ब्रह्मांड में हम लोगों ने जितने श्री रूप गोस्वामी के विषय को पर विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा हम लोगों ने जिस कथा को हम लोगों ने श्रवण किया, ब्रह्मांड में शायद इसी विषय पर इतना कहीं विवेचन नहीं हुआ। इसलिए इसका कारण क्या है? इसका कारण ही इस कारण से महाराज जी है। शास्त्र में महाराज जी हम लोगों को इसी विषय पर इतना क्यों श्रवण कराया, उसमें कारण दिया है। इसका कारण है हम लोग का अत्यंत अत्यंत दुर्भाग्य और विशेष करके कलयुग में ये महाप्रभु का संप्रदाय में आना ये बहुत सौभाग्य बात रहती थी। इसी गौरीय संप्रदाय में आते हैं और इसी गौरीय संप्रदाय में भी इसी रूपानुगत धारा में आने वाले कभी बहुत कम है। इसलिए श्रील महाराज जी कोशिश क्या है, अगर ये जगत की वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, तब ब्रह्मा विरीत चिराकांक्षित जैसे जगत में फैली और ढाली कांता ले पाया भाई लगातिया बाजा या करता है, तब ये प्रेम इतना दुर्लभ है, तब ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद के लिए भी ये रूपानुगत तो में आना इनके लिए भी दुर्लभ है। इसलिए महाराज की कृपा से महाराज ने सोचा अगर इसी विषय को अगर बार बार हम श्रवण करते करते अगर हमारे हृदय में अगर थोड़ी सी लोभ आ जाए तब हमारा ये जीवन सार्थक होता है। इसलिए शास्त्र में बताया कृष्ण रस महिमा मति प्रियता पुत्र भी यदि लभते, अगर जीवन में ऐसे कृष्ण भक्ति रस में कृष्ण भक्ति रस नहीं आता भक्ति रस में ऐसे जो जिनका मति संपूर्ण सरावर हुआ है, अगर जीवन में ऐसे भक्तों का संग अगर मिल जाए एक बहुत बड़ी बात बता रहे को भी सुकृत रंग न लग करे कहते करोड़ जन्म का सुकृति होता क्योंकि बगैर सुकृति के संसर्ग प्राप्त नहीं होंगे सुकृत नहीं पूर्व संचित है कहते पूर्व जन्म का सुकृत को ये सत्संग की प्राप्ति होती है, लेकिन कहते हैं करोड़ों जन्मों का सुकृति द्वारा भी जो वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं अगर ऐसे राधा रानी की भक्ति में जिनका संपूर्ण मति उसमें एकदम सराबर हुए हुए ऐसे भक्तों का अगर संग मिले वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जी को वही व्यक्ति ही उतना गंभीर रूप में समझ सकता है जिन्होंने ऐसे भक्तों का संगत किए। अगर भक्तों का संगत नहीं किया तो वो समझ नहीं सकता इतने बड़ी बात यहाँ पर क्यों बताएंगे। इसलिए हम लोगों का इसी दृष्टिकोण से हम लोगों का जो महाराज जी का संग मिला है समझो ये कोई साधारण बात नहीं। जब भी हमारे गौड़ीय वैष्णव में हम सब जगह जाते रहते हैं, लेकिन हमारे महाराज का बलि और महाराज का भावना जिस रस में जो हम गौड़ीय जिस परंपरा में आए, कहीं कहीं लोग बता रहे हैं तो वो भी प्रेम मंजिल था बहुत हम किया उसको पालन करने में ये करने में हमारे क्या समर्थ है। हाँ पर भले इधर उधर लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन ये वस्तु कितने महत्वपूर्ण है जिस काम के लिए आज जब तक हमारा लक्ष्य ठीक नहीं हो साधन ही हमारा ठीक नहीं हो। इसलिए पहले लक्ष्य हमारा ठीक होनी चाहिए हम किस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं तभी जाकर हम लोग फिर उसके लिए हम साधन कर सकते हैं। इसलिए पहले हृदय में वो वस्तु का प्रति कोई लोभ आनी चाहिए। हम 10 साल 8 साल में डॉक्टर बनेंगे पीएचडी करेंगे लेकिन उसको पहले उस चीज को लक्ष्य करके कोई फिर पढ़ना है तो उसको साधन बदल सही होगा। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य रहा जो पिछले महाराज भागवत में तीन दिन तक हम लोग एक विषय पर हम लोग ने इतने इतने रूप में हम लोगों ने श्रवण किया है कम से कम गुरु जी को कृपा द्वारा हमारा हृदय में थोड़ी बहुत तो उसकी प्रतिष्ठा प्रति कोई लोभ आया। इसलिए हम लोग अभी जो महाराज से थोड़ी बहुत कुछ सुना है जब हम जाकर बाहर नहीं बोलते सब लोग आश्चर्य हो जाते इसको बाहर इनको कहां से मिला कहां से बोल रहे। इसलिए कि हमारे आज जो बलदेव प्रभु आज जो अद्भुत हुए जब श्री बलदेव प्रभु का गुरुपाद प्रभु का दो स्वरूप बताया फिर एक स्वरूप गुरुदेव बलदेव अभिन्न स्वरूप है उनका दूसरा स्वरूप है राधा रानी की निकुंज अर्जुन रति तेज सिद्धि चाचा दिव्य संसार का भय से पहले के 6 इंद्रियों को दमन करता है उसको बाद में फिर निर्णय शुद्ध सत्व होने पर शुद्ध होने पर फिर वह भूमि में पुनः भगवान का जो नाम रूप गुण लीला आदि उसे हृदय में पुनः प्रकाश पाता है। इसलिए फिर बलदेव प्रभु ये सप्तम गर्भ में से बलदेव प्रभु आएगी फिर ये सप्तम गर्भ फिर ये हवा रहती है फिर जब आसक्ति जब घनीभूत अवस्था को प्राप्त करता है वो रतिवा भाव कहलाता है। क्योंकि जो भाव है ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ वस्तु है अत्यंत दुर्लभ है फिर सात चीज आनंद की प्रचलित अत्यंत अत्यंत घनीभूत अवस्था है। क्योंकि जो भाव अवस्था क्योंकि प्रस्फुटित पुष्प जैसे है क्योंकि पुष्प का जो बाहरी भाग क्योंकि ये सुंदर लगा उसका जो अंदर जो प्रभाव है मोक्ष को भी तुच्छ करने वाले अगर किसी साधक का हृदय में ये भाव रूपी कल्प लगा कि ये जो भाव के अति प्रस्फुट पुष्प है जैसे पुष्प प्रस्फुट होने पर भ्रमर आकर के उसको पर में मधु को पान करने के लिए वो मरना लगते हैं उसी तरह हृदय में जब ये भाव अगर प्रकट हो कृष्ण रूपी भ्रमर भी वो आकृष्ट होकर के ये भक्ति रस की सुधा को पान करने के लिए वो भी मरना लगते हैं। कहते हैं कि भाव अगर हृदय प्रकट हो तब ये जीव को भी जगत में सर्वश्रेष्ठ रूप में पूज्य कर देता है। ये भाव इतने दुर्लभ वस्तु ये भाव है। कहते भावावस्था में भगवत प्राप्ति का पहला उसका लक्षण उसको मिलता है। कभी तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने आकर उसको सुधा पान कर चला गया कभी कभी ऐसे लगता है कभी कानों में भगवान की चरण की नूपुर की झंडा सुनने को मिलता है कभी भगवान की वस्त्र अवतार की आभा उसको चराचर कर देता है कभी कभी उसको ऐसे लगता है मानो किसी ने आकर उसको स्पर्श किया है उसको रोमांच हो जाता है कभी कभी भगवान की चरण की नूपुर की झंडा उसको
एक श्लोक द्वारा
त्यागे तद आया नमी तो मुझे हो करने का प्रभातो संकीर्तन ही करती करो कमराय सब के सब एक हम तेरे मेरे गुरुवार रत्न से नित्यानंद प्रभु अभिन्न श्री महाप्रभु है अभिन्न महाप्रभु इसलिए जो दास है तब कृष्ण ही किया यदि दूसरे व्यक्ति से दास किया तब श्री बलदेव प्रभु राम नाथ ने ये दास करते हैं कोई भी बोलते हैं दास धनिया ने किया है कृष्ण ने बलदेव प्रभु कहा किया इसलिए प्रताप दास ठाकुर प्रमाण देते हैं श्रीमद भागवत से कैसे बलदेव प्रभु के राम नाथ ने कृष्ण ने दास किए इसलिए किसी ने अभिन्न श्री कृष्ण से इतने अभिन्न श्री बलदेव प्रभु है कैसे बलदेव प्रभु के जितने सारे विकार है कैसे बलदेव प्रभु कैसे कृष्ण वृंदावन परित्यज्य पार एकम न गच्छति जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ने के एक कदम भी ये ब्रज के बाहर नहीं जाते तब उसी तरह से मूल जो बलदेव है जो रोहिणी नंदन बलदेव वो उसी तरह ये ब्रज छोड़ के नहीं जाते अपूर्ण लाते समय वो अपूर्ण भाग से कृष्ण बलराम ब्रज के कृष्ण बलराम वहीं से वापस चले जाते हैं अब ब्रज में रहते हुए उनका जो अस्त्र श्रृंगार है वेणु है फिर उनका ये सब के सब अस्त्र है लेकिन जब वो आते हैं मथुरा में द्वारका में उस समय उनके हाथ में हर और दूसरा है क्योंकि हर द्वारा वो खेती करते हैं और किस चीज की खेती करते हैं तब जीव का हृदय में हमारा हृदय जो उसर भूमि अर्थात जो कठोर है तब वह भूमि को खेती करके उस पर लगन चला रहे तब उसमें बड़े बड़े जो बीटी होता है तब मुसर को क्या करते हैं तब उसको मार मार के उसको तब मुलायम बन भरा देते हैं तब उसी तरह दुर्पाद वर्ण भी ये हरि कथा रूपी तब संत एवास चिन्ह रखती मन व्यास संत संत मुक्ति की उसी तरह हमारे गुरुवार वर्ण भी अपना वाणी रूपी कठोर वाणी को द्वारा हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो अनर्थ को वह संपूर्ण रूप में मुलायम बना करके कृष्ण भक्ति कल्पलता जैसे हृदय में प्रकट हो उसको उन्होंने उपयुक्त हृदय में बना दी कैसे बलदेव प्रभु जो खेती करते हैं तब वो तीन प्रकार में खेती करते हैं बोले कहाँ कहाँ पर तब एक जगह बोलो वृंदावन में उनका खेती है तब किस चीज की तब बोलो वृंदावन में जितने परिकर है कृष्ण ने कह दिया कौन है कभी बलदेव प्रभु सब जैसा बलदेव प्रभु प्रकाशित हो गई विभिन्न रूप में बलदेव प्रभु प्रकाशित हो गए वहां पर जितने जीव के बलदेव प्रभु से प्रकट हो गए वहां पर कृष्ण का नित्य सेवा नियुक्त है उनको बता नहीं कि माया जगत कुछ चीज है जहाँ पर जीव इतने दुख कष्ट हो करते हैं जब वो संकर्ष रूप में कभी वैकुंठ में भी वहां पर कितने सारे जीव है भगवत सेवा में कभी वहां पर संकर्षण से प्रकट होते हैं और एक होते हैं श्री कारण साई विष्णु से जो कुछ जीव भगवान का भक्ति के तरफ आकृष्ट होकर के भगवत सेवा में कुछ चले गए और हम जैसे दुर्भाग्य की भगवत सेवा को छोड़ करके इसी जगह में आ गए और संसार का दुख कष्ट से हम लोग तरह तरह से हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं वो तीन जगह लोग खेतियों में करते जुड़े लोग करके खेतियां करते हुए किसी जगह में जो जीव हम लोग भी आ गए फिर बलदेव प्रभु ने देखा कि जीव तो कृष्ण का सेवा छोड़कर चले गए इसलिए बलदेव प्रभु अभिन्न दुर्पाद वर्ण रूप में पुनः इसी जगत में आते पर भी बोलते भगवान के सुख काम करने का क्या जरूरत था भगवान अपना सृष्टि किया और जीव जगत में दुख कष्ट भोग कर रहे महाराज ने किसने प्रश्न किया महाराज ने बोला बहुत अच्छा हुआ हम लोग भगवान से विमुख होकर के आ गए क्यों तेरे अगर विमुख होकर के नहीं आते वहां पर कोई किसी मधुर रस या मजे का आपने कोई ना प्रस्ताव मिला हम इस जगत में आए और ऐसे दादा रानी की रस विवाह के भक्तों का हमें संग मिला और ये संग के द्वारा हमारे हृदय में जो लोभ की उत्पत्ति हुई और वो लोभ के द्वारा हम दादा रानी की मजे का को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्ति स्वभाव कोई मिलता अच्छा हुआ इस जगत में अवशेष करके ये धन्य कलयुग में जिस युग में महापुरुष स्वयं कलयुग में आए हैं इसे धन्य कलयुग चैतन्य अवतार कहां ये सुजोग मिलता हम लोगों को इसे अच्छा हुआ हम लोग विमुख होकर आए और इतने सौभाग्य हम लोगों का गर्भवा स्वरूप उन्होंने वर्ण किया जहां पर तारसी गर्भवा स्वरूप क्यों वर्ण किया कभी गुरु का नाम में वो मतलब अंधकार रू मतलब दिव्य आलो जो हमारा हृदय की अंधकार हटा करके साधो का हृदय में दिव्य आलो को जो संचार कर ये गुरु का काम है इसलिए बलदेव प्रभु करके गर्भवासु गर्भ मतलब गर्भवासु कभी अज्ञा अविद्या का ये प्रतीक है इसे श्री गुरु बलदेव प्रभु सर्वप्रथम एक गधे को वध किया हम गाल करता कि क्या गधा है गधा मतलब तो मूर्ख है हम तो मूर्ख नहीं है इसलिए गुरुपाद वर्म आकर के एक गर्भवा सुख बलदेव प्रभु गर्भवा सुख वध किया है इसलिए कभी गधा में जो उन्होंने वध किया है फिर उसमें फिर गधा मतलब बहुत सारे उल्टा सीधा गुण है इसलिए भागवत ने श्लोक बताया सुमी विवाह उपस्थित करें सांस्कृतिक पुरुष वस्तु न जात कर्म बस वेद हो जात नाम तदा रहे जिनको ये मानव जन्म प्राप्त होने पर भी कानों में भगवत कथा उन्होंने श्रवण नहीं किया तभी वो बोलेंगे तभी गधा है खरे मतलब गधा है और भक्तिंद्र ठाकुर कहते हैं सही गाधा वही संसार में बोझा वही नो आने कथा श्री भक्तिंद्र ठाकुर कहते हैं और दूसरे कीर्तन में कहते हैं गंधर्व मतामी कई परिश्रम कार वाली केतु कई ना कुछ ही लगता तो इसके लिए कर रहे क्यों संसार में गंधर्व जैसे क्यों परिश्रम कर रहे हैं पहले एक बार तो सोचो मैं गोरा हूँ कहाँ साया था क्या कर्तव्य है इसलिए पहले ये चीज को सोचो इसलिए जीव का हृदय में जो अविद्या है कि जो स्वरूप भ्रम असल तृष्णा और हृदय दोनों सारे अविद्या है तब श्री श्री बलदेव प्रभु जीव का हृदय के सारे अविद्या को समाप्त करते हुए हमारा हृदय को कृष्ण भक्ति ऐसा भाविता को करा कृष्ण भक्ति की बीज को बपन करने का और उन्नत जमीन को तैयार करने में जिसको द्वारा भगवत भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हम तो बहुत कुछ बोलना चाहता वेल कर दिया इसलिए आज हम लोग महाराज के चरण में प्रणाम करते अभी वही बलदेव प्रभु अभिन्न रूप में श्री गुरुपाद पद्म रूप में आए इसलिए पहले तो गुरु जी की कृपा और इन्हीं की कृपा से ही हमारा हृदय की सारी अभिज्ञा अनर्थ दूर हो सकता है फिर कृष्ण भजन की हम फिर हम अधिकारी बने हम यही बोल करके श्री बलदेव प्रभु और श्री गुरुपाद पद्म चरण में
बहुत अच्छा तो हम ये एक घंटा और बोल सकता था तो और वक्ता है इसलिए तुमको
कृष्णाय कृष्णवत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः शंकर शंकर तुसाई दर्वोद साई जपयोद्धि साई श्री सत्सजस्सांश कला सनितानंदाख्यराम शरणं ममास्तु सर्वप्रथमास्मदीय परमानंद गुरु प्राप्त होने अशुभपुर की प्रणति ज्ञापन करता उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद वैष्णव वृंद सज्जन माताओं सभी गुरु का प्रणाम तो आज रक्षाबंधन शिष्य बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव तिथि है अभी अभी पूज्य पाद रक्षानंद प्रभु जी ने वर्णन किया है कई दिनों से श्री रघुकुल स्वामी जी के विरह तिथि पर उनके जीवन चरित्र पर और उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए सभी वैष्णवों ने और विद्वानों ने अपने भाव को विचारों को व्यक्त किया है सब कथा का सार एक ही निकलता है कि हम सभी गौर वैष्णव जो कि रूपानु कहने का ठीक गर्व बोध करते कि हम सभी रूपानु के इसके साथ साथ आज श्री बलदेव प्रभु जी के आविर्भाव तिथि पर यह भी व्यक्त होता है कि हम गुरुवारों के अर्थात गुरु जी के अनुगत में गुरुवारों वैष्णववारों भजन साधन करने के लिए बिना अनुगत के कदापि भजन नहीं होगा शून्य से लेकर के ऊपर तक संपूर्ण सर्वत्र ही देखा जाता है अनुगतमय यह वैष्णव धर्म और व्यवहार। जहाँ व्यवहार कुशलता है वही वैष्णवता है, और व्यवहार कुशलता के अभाव में वही निम्न अधिकारी में चला जाता है। फिर अनुगत के विहीन होने पर ही उस शिथिलता आ जाती है और वही भजन साधन चौपट होता है। इसलिए वेदांत ने कहा है नायमात्मा वर्धने कलभ्य, आत्मा भगवान श्रीहरि बलहीन व्यक्ति को दुर्वचित व्यक्ति को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तो बलहीन क्या है, यही बल जो है बलराम जी है, जो कि श्री बलराम जो बलदेव प्रभु अखंड गुरुदत्त के मूल आश्रय विग्रह स्वयं विषय विग्रह जो कि स्वयं बलराम जी आत्मनि के आविर्भाव थी। तो बिना उनके अनुगत के बिना उनकी शक्ति के कृपा के राधे कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं होती है। जैसे अभी कीर्तन में आया था नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ब्रज में राधे कृष्ण की प्राप्ति भी संभव नहीं है। इसलिए उनको बना है राधे कृष्ण की प्राप्ति के लिए बलदेव प्रभु की कृपा चाहिए। बोले क्यों, वे संदेह शक्ति के आधार है। सदनी जो सत्ता और चित सत्ता, उस चित सत्ता जब तक हृदय में नहीं आएगी तब तक जैसे कल गुरु जी ने भी बताया विश्व सत्ता का मतलब है बद्ध जी, शुद्ध सत्ता मुक्त जी और विशुद्ध सत्ता परिकर होता है। तो इनमें से अब हम बद्ध जी हैं, हम विश्व सत्ता में प्रकृति के गुणों में आहत हैं, पर ये गुण निकल जाए और वह विशुद्ध सत्ता हमारे हृदय में प्रकटित हो, जो सदनी शक्ति सत्ता के साथ स्वरूप हृदय में जब तक नहीं आता है तब तक कुछ भी अभी देखा जा रहा है, जो है भाई हम मुसलमान हैं, तो अभी अभी बताया कि हम के द्वारा खेती किया जाता है, तो बलराम जी संसार की खेती करते हैं, जितने भी जीव हैं सब उन्हीं से ही तो आए हुए हैं, और सभी सनम सभी सत्ता सभी प्रकार सब उन्हीं से ही है, इसलिए बलराम जी जो है जो कि वैभव विलास भी कर रहे, तो वैभव तत्व वैभव प्रकाश से और वैभव विलास हो जाते हैं द्वारका में जाने, जैसे कृष्ण से भी अवतार समो प्रकटित हुए हैं वैसे बलराम जी से भी आए हुए हैं, इसलिए बलराम जी को द्वारका में संदर्शन कहा गया है, गुरु संदर्शन वासुदेव संदर्शन प्रद्युम्न प्रद्युम्न अनंत आदि चतुर्भुज रूप में, और वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण है, संदर्शन स्वयं बलराम जी है, जहाँ वैभव विलास में आ रहे हैं तो वहां पर द्वारका में हम उत्सव धारण करने के लिए ऐश्वर्य स्वरूप बन जाते हैं संदर्शन रूप में, क्योंकि गंगाचार्य ने उनके नामकरण में कहा है संसार में सबसे बड़े बलशाली होंगे, सर्वाधिक बलशाली, और सभी सभी को आकर्षण करके आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए राम भी कहा करते, इसलिए उनका नाम हो गया बलराम। देव तिपति जी देव जो तिपति किरति जी देव जो कि स्वयं क्रियाशील है और निरामयों के द्वारा कृष्ण का सदा सर्वदा आनंद वर्णन करते हैं, हर प्रकार से सेवा करते हैं, ऐसे बलदेव जो कि बलराम है, और वही द्वारका में आकर के वे मूल संदर्शन, और फिर जबकि वैकुंठ में है वहां भी द्वितीय चतुर्भुज के रूप में वहां संदर्शन रूप में है, और उन्हीं से ही प्रकार होता है कर्मापिशाही महाविष्णु जो कारण समुद्र में शयन किए हुए हैं, और जिनसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं, जिनको महाविष्णु अनंत पारों विक्रम जिनके हजारों लाखों करोड़ों अनंत शरीर पैर इनका के रूप में वर्णन किया गया है, वह महाविष्णु जिनका प्रकाश है तारातिशय विष्णु के रूप में, फिर एक एक ब्रह्मांड के अधिनायक बन करके देखकर गुरुशय विष्णु बने, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा विश्व जगत के प्राणियों के शरीर का निर्माण करा दिया, और जिनके अंदर जीवात्माओं को प्रवेश कराकर इस संसार क्षेत्र को चला रहे, ऐसे परिचालना करने वाले गुरुशय विष्णु जो आदि प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है, फिर एक अंश में कार्थिवशाही विष्णु है जो क्षीर समुद्र में दुग्ध समुद्र में शयन किए हुए विष्णु समस्त जीवों को पालन किया करते हैं, इसलिए वे क्षीरोशाही विष्णु है, फिर उनसे उनका भी एक प्रकार जो है वही अनंत देव के रूप में है, जिनको शेष कला कला रूप में बताया गया वही अनंत देव, इसलिए विश्व जगत के अणु अणु में सबके अंतर्यामी रूप में सबके पालक रूप में और सबके सृष्टिकर्ता के रूप में विश्व संसार के निर्माता के रूप में सभी प्रकार से बलराम जी विश्व जगत में ओतप्रोत रूप में व्यक्त हैं, और वही लीला पुरुषोत्तम बनकर जो कि कृष्ण के अभिन्न संगी हो करके सदा सर्वदा कृष्ण का आनंद वर्णन करते हैं, अभी अभी आपने जैसे श्रवण किया है श्री बलराम जी गुरुदत्त के रूप में अज्ञानता के प्रति कर्मासुर का भी वध किया और उसे मारकर अज्ञानता को हटाया, जो हमारे अंदर अज्ञान अंधकार और धूली धूल कंकर पत्थर और आधी तूफान बचा हुआ है, जिस आधी के कारण आंखों में धूल भरा हुआ अहंकार अभिमान और गर्व में हम भरे हुए हैं, तो ये सभी अज्ञानता को अहंकार अभिमान पर चूर्ण विचूर्ण करते हैं, जैसे बलराम जी ने एक पुस्तिका साथ में प्रभु का सुन को मारा, बलराम जी सामने है, यानी बलराम जी राधा कृष्ण के पास में नहीं है। बलराम जी जैसे नील वस्त्र को धारण करते हरहती मिलित भीति जमुना भाव जमुना देवी डर के कारण जमुना जी बलराम जी के वस्त्र में समा गई। क्यों कहीं बलराम जी डाकाटा के साथ शासन भी लगा रहे, इसलिए इस दशावतार के टीका में भी वर्णन बड़े मजाक से वर्णन हुआ कि जमुना जी जहां बलराम जी के वस्त्र में छिप गई, कहीं बलराम जी उल्टे से दांत नहीं लगाते जोर जबरदस्ती, ऐसे ही तो बलराम जी ने हम से खींच लिया। जमुना जी ने सोचा था कि बलराम जी आए कि हमारे लिए नहीं है, पर तुम्हारे लिए खींच लिया। तो इस प्रकार बलराम जी जो कि मर्यादा के पक्के हैं और अनुशासन को बनाए हुए राधा कृष्ण की मनन लीला होकर विस्तार करने वाले ऐसे श्री बलराम प्रभु के चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं। अर्जुन के चरणों में
श्रीमान माधव महाराज जी कुछ बोले।
ओम ज्ञानमिदानन्दस्य सर्वकरा चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते हरग्राम नमस्ते कुशलार्थ परमाय नमस्तुभ्यं कृष्ण कृष्णपूर्वज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हिंदी ना इंग्लिश, हिंदी ना इंग्लिश,
अंग्रेजी बोलो। मैं
सबसे पहले अष्टदेव विभाग कर रहा हूँ। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्यमत मुक्तिदान श्रवण गोस्वामी महाराज प्रभो विष्णुपाद परिकाचार्य मंदिर अष्टोत्तर शत शिष्यमत मुक्तिदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत प्रति साष्टांग गौरव की अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित जल सन्यासी गण कृष्ण के लिए कहा गया वृंदावनम परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति, ऐसे ही बलदेव प्रभु की जो रही नंदन है वो ब्रज के एक पद भी नहीं जाते हैं। और बलदेव प्रभु है कौन, इसके चैतन्य महाशि चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी पाद को बताया कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अंतर्ज्ञान तत्व जी रजत नंदन स्वयं रूप रेखात्म रूप अवेस्ता नाम प्रथम तीन रूपे रहे भगवान। भगवान का तीन स्वरूप है स्वयं रूप प्रदेकात्मक रूप और आवेश। स्वयं रूप में स्वयं श्री कृष्ण प्रदेकात्मक रूप कौन है, प्रदेकात्मक रूप में बलदेव प्रभु। इसमें शिव के वर्णन का थोड़ा फर्क है, हाथ और अस्त्र का ये तीन होने पर उनको प्रदेकात्मक रूप कहा गया। बलदेव प्रभु श्री कृष्ण के प्रदेकात्मक रूप है। बलदेव प्रभु के दो प्रकार के जन्म देखा जाता है, एक तो महाप्रेमी के कारण से रजनंदन और देवकी के अंदर जो बलदेव प्रभु थे वो वसुदेव नंदन या देवकी नंदन वो मथुरा तारका की लीला है और प्रजनंदन शाश्वत के साथ रजनंदन है ब्रज लीला करते हैं। ब्रज में दो असुर देखते हैं, एक धनुरासुर एक प्रभासुर। और कृष्ण के जितने प्रकार की लीलाएं हैं बचपन से लेकर के सब में बलदेव प्रभु का अहंकार है जरूर को भी खत्म किया। ये वर्ण तो दो हजार वर्ष में रहते हैं, जैसे पवित्र प्रभु कभी भी प्रवचन के नहीं कहते विनयन प्रभु। इसका प्रमाण कहाँ पर है? हम लोग गुरु जी के सुनो से सुना, जब नंद बाबा कृष्ण बाबा सखा को लेकर के कंस के राजपुरी में आए, क्यों कंस का निमंत्रण दिया था, कंस को बाद में उपरांत दो दिन बाद जब बलदेव और कृष्ण मिले तब नंद बाबा ने कहा, अरे बेटे तू मुझे भूल गया, आप भी रो रहे हैं बेटे भी रो रहे हैं। उस समय श्री चक्र ठाकुर ने जी का एकदम गुरु जी से सुना, दो प्रकाश है, एक प्रकाश में बलदेव प्रभु कृष्ण बलराम को सखा को गले बैठा करके हाथ से कुछ खेलते रहने चले गए, और प्रथम प्रकाश में बलदेव प्रभु रोड़ पर नौ रोड़ पर अकेला जा रहे हैं। इसने दिखाया ये प्रभु चक्र कहीं नहीं जाते हैं, और जो रसन को बताया जटपुर ठाकुर से वो भी एक प्रमाण है। प्रतिलोक सब लोग ने बताया, अरे जो बड़े लोग कैसे श्रीमद्पति की सेवा करती हैं, एक प्रमाण देता हूँ उसमें। जैसे बड़े लोग कृष्ण पीतांबर है और बड़े लोग तू नीलांबर है, जैसे निशांत लीला में जब राधा कृष्ण विलास के ऊपर जल्दी बाजी आ रहा था तो विदिता कहते कि ने बता दिया इंद्रा के आदेश से जटिला जटिला का दो अर्थ है, जटिला का राधा जी की सास, दूसरा था जोटा जाल सूरज का किरण जगत में आ रहा है। जब जल्दी दोनों किशोर किशोर चले जाते हैं विक्रम के कारण वस्त्रों का बदल हो जाता है। इधर ब्रज चावल में मुखा देवी और जटिला राधा जी को जगाने के लिए आती है, दूसरी ओर पूर्णमास
सम्मान नहीं किया, कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, पता चला था उनको
लिया मैं हॉल, देखो ठीक है मैं सुधार करूंगा, दूंगा नहीं दुबा दूंगा, ऐसे खेलने लगे। अब भूचाल शुरू हो गया, तब दुनिया वाला सब आकर के पैर को क्षमा मांगे और जोतु के साथ लक्ष्मण को समारोह दिया गया। ये देखा, और एक है दिव्य बंधु, और राम लीला में भगवान की बहुत सेवा की थी, कहते थे तो सर भगवान लक्ष्मण क्या करते क्या जानता है, लक्ष्मण को सहन नहीं कर सकते थे। वही लक्ष्मण आए बलदेव के रूप में और भगवान कृष्ण आए भगवान राम के रूप में। भगवान राम और कृष्ण दोनों अभिन्न है और बलदेव रूप लक्ष्मण अभिन्न है। वो जो दिव्य पिता का देश था वो देश बढ़ते बढ़ते और बहुत बड़ा हो गया। तो बलदेव प्रभु जब रोहिणी पर्वत में अपने शक्ति के साथ विहार कर रहे थे, वही दिव्य बंदर उनको विभिन्न तरह से उपहास कर रहा था, बिना गंदी हरकतें कर रहा था। तो बलदेव प्रभु को सहन नहीं हुआ, खेचा हाथ से और उसको से मार दिया। ऐसे ही हम भगवान को मानेंगे, गुरु महाराज को नहीं मानेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उसका अंगूठा दिखाएंगे तो बलदेव प्रभु सहन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे दिव्य बंदर को बात करके दिखाया। बलदेव प्रभु महाभारत युद्ध में अंश ग्रहण नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा में निकल गए। लोकमान संसुद ये व्यक्त की कथा बाच रहे थे, पुराण कथा, तो कभी खड़े नहीं सम्मान नहीं किया, तो हाथ उस ग्रास लिया, हाथ लगाया, उनका गला काट दिया। तो ऋषि लोग कहा कर उठे, प्रभु आप कथा कहाँ से सुनेंगे। तो बलदेव प्रभु का केवल जिला दू नहीं कुछ आपने क्या अच्छा किया जो ये व्यवस्था करें आप कथा सुन सके। तो उनके छोटे बेटा का उग्र स्वभाव से उनको बैठा दिया, हाथ रख करके समस्या स्फूर्ति हो गया। इसने दिखाया गुरु परमात्मा हो ऐसे भी उच्च वैष्णव हो आ रहे हैं, उनको उठ करके स्वागत करना चाहिए, और नहीं करते हमारी दशा भी ऐसी होगी, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। जब महाभारत युद्ध का अंत होने आया तब बलदेव प्रभु आगे पहुंचे,
महाराज का निर्देश
गौरचंद्राय राधिकाय धरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय धरभक्ताय नमः
Mahadev's appearance day. For the last 3 days we've heard the very sweet pastimes and descriptions of Śrīla Rūpa Gosvāmī from a very powerful Harikatha. And we have already heard today so many tattvas describing Śrīla Baladeva Prabhu. Śrīla Baladeva Prabhu is not different to Krishna entirely. He is Vaibhava Prakash. Krishna is Svayam Prakash, Baladeva Prabhu is Vaibhava Prakash. There is some difference in complexion. Baladeva Prabhu is white, Krishna is black. One day, Rohini, Mother Rohini, she visited Vasudev in the jail of Kamsa. And at that time, she she met with Vasudev, and immediately after that she became pregnant and she went straight to Vrindavan, and she was carrying Baladeva Prabhu in her womb. A few months later, Devaki, she also became pregnant, carrying Mula Sankarshan in her womb. Devaki, she miscarried after 6 months. And that miscarriage, that Mula Sankarshan, was transferred to the womb of Mother Rohini. Baladeva Prabhu was in the womb of Mother Rohini for 14 months. And he was born just 8 days before Sri Krishna. Sometimes people are saying that Baladeva Prabhu is 1 year older than Krishna, but this cannot be true because there are so many pastimes of Baladeva Prabhu and Krishna playing together. They're learning to crawl together. One time they became caught in one very prickly bushes. They went in, they saw some beautiful flowers, then they got caught in there, the bush closed, they couldn't come out, and they cried for their mother. But they were both the same age. They were crawling around together in Gokul. They would catch the tails of the cows and the calves together and slide around in the courtyard of Nandarava. So there are only 8 days difference. But Baladeva Prabhu is manifested directly from Krishna in a form of sevak abhiman. He's performing so much seva. Seva is the symptom of affection, love. So Baladeva Prabhu, he manifests all of the jivas in all of the three worlds. From Baladeva Prabhu to serve Radhavinod Bihari in Goloka Vrindavan, he manifests as the Nityaparikas. And as from Mahasankarshan in Vaikuntha, he manifests as all the Nityaparikas serving Lord Narayan in Vaikuntha. And then from Mahasankarshan, from Lord Narayan, coming into the Purusha avatars as Mahavishnu, then he manifests as all the bodies of the jivas in this material world. But all in a mood of loving service to Sri Krishna. Baladeva Prabhu is so greedy, he's so enthusiastic. Rasananda Prabhu was quoting his verse, Krishna, so was Avyatomati, Kriyatomati, Telavite, Patra-Runyam, this greed is very, very prominent in Baladeva Prabhu. So greedy that he's taking part in all five rasas. In Shantaras, he's manifesting as all of the Dham. He's manifesting even as Krishna's ornaments. Krishna's beautiful earrings hang on his ears and touch his cheeks. Balaram is constantly associating with Krishna in his service moves. In Dasyaras, he's serving directly to Sri Krishna. In Sakya Rasa, he's playing so many pastimes with Krishna, but Sakya Rasa, he's his brother. And in Madhur Rasa, he's serving as the younger sister of Radharani as a number one jari. So in all of these moves, Baladev Prabhu has this unconscionable greed for service. This service mode is the example of what is needed for the sadhaks in this world in their connection with Sri Guru. Baladev Prabhu is the Kanta Guru, Mula Tatra. He's the root of all Guru Seva. And he's exhibiting this in his service to Sri Krishna. So we become inspired on this day, Guruji Baladev Prabhu, in a service mode to Sri Guru. That nothing, none of the truths that we heard on Sri Rupa Goswami, for example, can manifest without the mercy of Sri Guru. So Baladev Prabhu, he performs many pastimes in Vrindavan. He heals Devakasura, he heals Paramakasura. Devakasura is representing the donkey carrying so many anartas. Only Gurudev can cure us of these unwanted anartas. And as Paramakasura, the embodiment of lusty desires, Srila Gurudev will also purify us of those desires. When Srila Baladev Prabhu is in Dwarka, Krishna is refusing to go back to Vrindavan to pacify the gopis. Baladev Prabhu, he takes that role. He goes back to Vrindavan and he pacifies the gopis of Vrindavan. There are different explanations of his relationship with the gopis of Vrindavan. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, he said that one time during the Holi festival, some young gopis were standing in the background. And they looked to Baladev Prabhu with affection, and Krishna indicated at that time, you can have rasa with these gopis in the future. This is one explanation. Another explanation is that the many gopis were too young to actually take part in the rasa leela. So when Baladev Prabhu went back, he was dancing with those gopis. But Baladev Prabhu is always in the form of seva abhiman. He's never bhogavriti. He's never wanting to join anything himself. So Baladev Prabhu, Srila Gurudev reconciles all these different vichars, these different considerations, by saying that if Baladev Prabhu was dancing with Krishna's gopis, what is the harm? Baladev Prabhu is in a mood of deep separation from Krishna when he's in Vrindavan. To such a degree, at one point during the rasa, he turns blackish. And in a mood of such deep separation, we see in Mahabhava, in Mahabhava, in Dalji, where Baladev Prabhu is black, in separation from Krishna, while he's performing this rasa leela, he feels the mood of the gopis' separation. So there is no anomaly, there is no difficulty in understanding Baladev Prabhu at Ramaya when he was dancing with all the gopis. So all of these considerations can be understood by the mercy of the acharyas. Baladev Prabhu, when he's manifesting all of the universes, he's always looking to just bring pleasure to Krishna. His whole mood is service to Krishna. Radharani, she manifests as Krishna's pleasure potency. Baladev Prabhu is serving Krishna in all respects throughout his pastimes. There are so many pastimes of Baladev Prabhu, as Pujapad, Madhav Maharaj has just described so many pastimes. How he went into the assembly with Ramahasaran, and Ramahasaran was the only one who didn't actually acknowledge Srila Baladev Prabhu's supremacy. And Baladev Prabhu has become Guru Mulakatva. He's establishing the etiquette that one must honor always that senior personality. So Baladev Prabhu, at that time, he took a blade of grass and just touched Ramahasaran. And then he left his body. The sages became very disturbed and unhappy. What had happened? Baladev Prabhu immediately said, I will bring him back to life again. But the sages said, no, no, what is done, what is done. And then his son, Ugrashava, he benedicted him that he would actually hear all these pastimes. So Srila Gurudev, on this day, we can honor very profoundly in connection with this whole wonderful four day festival we have, Shivagurudev Ki Jai.
संक्षेप में श्याम जी बोलेगा
रसांदु बोल चे ब्रह्म ये ब्रह्म जो कच्चा के कपाल पर ना तो बोले दीजिए
श्याम बोले थैंक यू ओ थैंक यू फॉर योर गुड स्पीकिंग संक्षेप में बोलना
गुरवे गोविंदाय राधिकाय तनाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नरभक्ताय नमो नमः माया जिते जाति वैकुंठ लोके सरस्वती चतुर्गुणमते रूपम यशोदभाति संकर्षनाभ्यं सन्नित्यानन्द राम शरणं ममास्तु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्मलिंगा पुष्पम विष्णुपाद अशोकपति दिवंदन अर्जुन से महाराज के चरण कमलों में आनंदपुर की धरमल प्रणाम करते उनके हृदय की पाठ प्रार्थना करता तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मम विष्णुपाद अशोकपति वेदांत नारायण को से महाराज के चरण कमलों में आनंदपुर की धरमल प्रणाम करते उनके हृदय की पाठ प्रार्थना
मेरा प्यारा दाऊ के बातों में बताएंगे दाऊद के सखाओं के साथ मिलकर के लवार हो गया तुम्हारे साथ ऐसा कर। तो बाल विवाद से लेकर के और जो आगे के लिए उनका माता महाराज जी बोले नीलाम्बर खान के द्वारा भी दादा माता की लीला में सहयोग प्रदान करते हैं। अन्यथा उस लीला में कहीं न कहीं वो जो अद्भुत है जो वैचित्र्य है उसमें रस का विलय हो जाएगा। और रस का उनका से होता है रसम सारम चमत्कार है और चमत्कार ही अद्भुत चमत्कार और अद्भुत चमत्कार ही उससे बलराम की कृष्ण की लीला को उनके रस के ऊपर छोड़ ले जाए। मानो कृष्ण प्रातः काल से बहुत जाने के लिए जा रहे हैं
हमारे प्रिय जन वही बदल सकते हैं। तो तुम्हें बहुत करना है सुशोधन के ऊपर आप गर्व करके मार्केट करें तो मेरा शिष्य है, जैसे मैं उसे सनेह करता हूँ तो मैं ही आपको तो समझा इसे कृष्ण को रोक दी कि आप मुझे मैं जाता हूँ मेरा बात सुन लेगा तो उनको पूर्ण विश्वास था कि जरूर बलराम है सुशोधन मेरी बात को मान सकते। लेकिन जब रावण वहाँ गए भीष्म आदि द्रोणाचार्य सब खड़े हो गए उनको स्वागत के साथ जानते कि महिमा को जिनके मस्तक पर एक काला
लक्ष्मण जी साथ में है। राम जी हिम्मत करके उस पर कर गए दोनों भाई
परस्पर बातचीत कर रहे थे। राम जी को पता है कि जानकी जी का रोज यहाँ पर आगमन होता है और आगे नहीं कुछ क्षण को आएंगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई उस वार्ता में जाकर के फूल को चुन रहे हैं, गुरु जी की सेवा के लिए ले जाना है उनके आदेश में आ रहे हैं। राम जी पुष्पों को तोड़ते तोड़ते सुबह की प्रथम किरणें गिरी, कुछ तो फूल गिर चुके थे, कुछ किरणों से गिरे और कुछ राम जी के सौंदर्य को देख कर गिरे। क्यों गिरे यदि नहीं गिरे मतलब कब नहीं होगा, प्रभु अपने हाथों से मुझे ढूंढ ले। राम जी फूलों को तोड़ रहे तोड़ते तोड़ते उनके बुखार के अंदर स्वयं की बूंद एक परिश्रम का बूंद हो रहा है। और उस समय जानकी जी अपने साथियों के साथ वहां पर आए आरोप तो उस वार्ता के माध्यम से सरोवर उसमें स्नान की उतरी, क्योंकि सरोवर उपरांत स्नान उपरांत पुष्प चयन करके और थोड़ी की पूजा करी प्रतिदिन का नियम। उनके साथ कुछ पांच दस सखियां भी जो मनोहर गीत गा रहे उसी में से एक सखी विलय हो गई और विलय होकर के पुष्प की सौंदर्य उस वार्ता को देखते 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 उन्होंने राम जी का रूप को देखा, साथ में लक्ष्मण जी को भी देखा, देख करके सखी होकर के जानकी के पास दौड़ी। मन में सोचे कि सौंदर्य मैंने तो देखा लेकिन मेरे जो भी नहीं है तो जानकी के यदि सौंदर्य की महिमा उनको सुनाया जाए जानकी और राम जी की जोड़ी बहुत कितना सुंदर हो। इस बहाने राम बारंबार हमारे जनकपुर को आए और हमें कुछ धन करेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, आते जाते बस एक बार हमारी ओर देख के केवल उसको गा जाए। मिथिला के लोग गाते हैं जब बरात आए कि मिथिला के नतवा से बड़ी गहरी शान है, हम कहने चाही पाऊ जो जब पर ध्यान दे हम के तो चाही पाऊ सुंदर हस्तकार। ये जब आए तो सुंदर सुराग में हम आनंदित होंगे, वहां जाकर बोलते श्यामल गौर का हम किन्नी बखान के गिरा पाया नयन के ऊपर, लोगों की महिमा को मैं नहीं कर सकते स्वयं जाकर के अपनी आंखों से देखो। आपने देखा लेकिन बोल नहीं सकते, दीवा बोल सकते लेकिन देख नहीं सकते। जब जानकी जी के कहने से आगे बढ़े तो पूछे है उनको तो सखी बोलते दोनों राजकुमार उस बाघ का देखने आए, देखकर बाघ कुमार दोनों आए, फूल लेने नहीं आए तो देखने आए। अगर बोले फूल तोड़ते हैं किसी की सेवा करते हैं जानकी जी के मन में उनके प्रति कुछ ये भाव आए क्या राजकुमार जी के सेवक ने स्वयं अपनी सेवा करते तो बोले देखने आए और बड़े सुंदर। तो जानकी जी दर्शन को करती होती उसका लक्ष्मण जी राम जी को सुंदर रूप से सजा गुरु तत्व भगवान राधा माधव को सजा करके उनके सौंदर्य माधव जी को बढ़ा करके उनकी महिमा को गा करके पूरे विश्व को आकर्षित करते। उनको प्रेम इतने डूबे होते हैं उनको अपने सजाने को होश का कृष्ण को बोले तो सज लेकर उनको होश नहीं होता तो गण लोग हैं उनको सजा करके राजा जी को सजा करके उसकी महिमा को कथा के माध्यम से वो कितने सुंदर है। महेंद्र मणि मंडल की मदा धर्म की देह अति ब्रजेंद्र गुण चंद्रमा पर नक्षत्र पर ये सब सौंदर्य माधव
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय संकर्षण कारण तोषाई गर्भोषाई चपयत दिशाई शेष जस्यांश कलाश सनित्यानंदाक्षराम। आज हम लोग बलदेव प्रभु जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। परख संहिता में बलदेव प्रभु जी का जन्म अगले छठ में जन्माष्टमी के बाद में जो छठ आएगी उस समय हुआ लिखा है, और उसके अनुसार में ब्रज में सारे तरफ सब जगह बलदेव जी का जन्म उस छठ को ही मनाया जाता है। किंतु हम लोग बलदेव जी का जन्म तिथि आज मनाते हैं, कृष्ण से 8 दिन बड़े। यदि हम लोग गर्ग संहिता के अनुसार में कृष्ण का जन्म बलदेव प्रभु का जन्म छठ मनाए तो कृष्ण करीब करीब लगभग 1 वर्ष बड़े होते हैं बलदेव। किंतु भागवत में लिखा है कि एक ही साथ में
रिंगन भूमि पर चलना,
भूमि पर चलते हैं रिंगते हैं,
नामकरण
दोनों का एक ही समय हुआ। यदि 1 वर्ष पहले बलदेव जी का जन्म हुआ तो नामकरण एक साथ में कैसे हुआ, और किस प्रकार से एक ही साथ में रिंगन इत्यादि हाथों पर चलना, ये सब संभव नहीं था। इसलिए हमारे तत्वज्ञ और हमारे संप्रदाय के रीढ़ श्री लज्जू गोस्वामी जी ने यह अपने गोपाल चंपू में ये वर्णन किया है। आज ही जैसे पूर्ण चांद निकलता है इसलिए उसी तरह से बलदेव प्रभु जी प्रकट हुए। कृष्ण का तत्व है सत चित आनंद। बलदेव प्रभु जी सत के अधिष्ठात्री देवता है, कृष्ण चित्त के, और आनंद अथवा लादनी शक्ति राधिका का, तीनों मिल करके तब कृष्ण तत्व है, कृष्ण प्रकाशित होते हैं। इनके तत्व के संबंध में रसानंद ब्रह्मचारी श्रीमान तीर्थ महाराज और सब लोगों ने वर्णन किया है। रामलीला में जब कृष्ण ने रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा जाओ सीता का वनवास ले आओ, उस समय में इनको बड़ा दुख हुआ। बिना किसी कारण के जिसको देवता और सब लोग ब्रह्मा जी तक शुद्ध बतला चुके हैं और उनको छोड़ रहे हैं सारा जीवन के लिए, तो उनको भीतर से बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कहा जे अब से मैं छोटा भाई के रूप में नहीं आऊंगे जी, इनका आदेश पालन करना होगा, मैं बड़े भैया के रूप में आएंगे, जो मैं जो आदेश करूंगा उनको पालन करना होगा। इसीलिए कृष्ण लीला में वो बड़े भैया के रूप में आते हैं। बलदेव प्रभु जी को इन लोगों ने बतलाया कि किस प्रकार से ब्रज में सिंगा लेते हैं और द्वारका में उनका अभिमान होता है देवकी और वसुदेव के नंदन, देवकी और रोहिणी के वहां पर भी होता है। देवकी के गर्भ में पहले आए, पीछे रोहिणी के गर्भ, तो वहां पर किस प्रकार से हल मुसल लेते हैं और किस प्रकार से जीवों की खेती करते हैं और मूसल से पाषंडियों को दूर करते हैं और जीवों के हृदय में जो अनर्थ है उसको दूर। हम कृष्ण लीला में ये देखते हैं, बचपन से ही कृष्ण और बलदेव एक साथ रहे, किशोर लीला तक ब्रज में रहे, विभिन्न प्रकार की लीलाओं को किया, कहीं मतभेद नहीं देखा गया। किंतु जब द्वारका में गए तो कुछ मतभेद देखा जाता है। बलदेव प्रभु जी का दुर्योधन के प्रति कुछ स्नेह था, वो बलदेव जी के प्रति वर्ष विद्वेष नहीं करता था, क्योंकि कृष्ण अर्जुन का पक्षपात करते थे, इसलिए उन पर वो इनका विद्वेष करता था। और बलदेव जी जनकपुरी में उसको गदा युद्ध सिखलाया था, इसलिए भीम से कम नहीं था। तो वहां पर बलदेव जी की इच्छा थी कि हमारे शिष्य दुर्योधन के साथ में हमारी बहन की शादी हो, सुभद्रा की। बलदेव जी के डर के मारे कृष्ण, वसुदेव जी, देवकी जी कुछ बोलना नहीं चाहती, किंतु बलदेव जी इस पर दृढ़ थे कि हम किसी प्रकार से विवाह करेंगे। और कृष्ण और ये सब नहीं चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से कुछ कहा कान में और वो बन गए त्रिदंडी और वहां पर बैठ गए और फिर प्रकार से सुभद्रा का हरण किया, ये माधव महाराज जी ने बतलाया। यहां पर एक मतभेद दे रहे, जब कृष्ण ने कहा कि आप कहते हैं कि सुभद्रा का ये हरण कर रहा है अर्जुन, अरे कहां सुभद्रा का हरण कर रहा है, सुभद्रा ही तो उसको रथ में लेकर के जा रही है और हरण कर रही है। एक यहां और दूसरा मतभेद कुरुक्षेत्र के युद्ध में बलदेव जी वहां पर हठात उपस्थित हो गए, जिस समय गदा युद्ध अंतिम युद्ध का चरण चल रहा था। कृष्ण जानते थे कि कैसे मरेगा दुर्योधन, नहीं तो वो मार नहीं सकते थे। भीम बलवान थे और वो गदा युद्ध में कुशल था, बलदेव जी ने सिखलाया था। किंतु कृष्ण ने इशारे से दिखाया जंघा और भीम ने जंघे में मारा। गदा युद्ध में नियम है कि कमर से नीचे न मारा जाए, कमर से ऊपर में ही है, किंतु भीम ने तो मारा जंघे पर और उसी समय वो गिर पड़ा। उस समय बलदेव जी दौड़ करके आए, बहुत अन्याय, मैं अभी इसको मार डालूंगा, गदा लेकर के एकदम तैयार हो गए। और उसी समय में कृष्ण ने कहा, जी भैया अन्य बड़ा भारी अन्याय यहां हुआ, गदा मारा यहां, किंतु आप उस दिन कहां थे जब भीम को बिना कारण 20 का लड्डू दिया गया, उस दिन आप कहां थे जिस दिन बर्णावत नगर में रक्षा भवन में उनको जला देने की चेष्टा की गई, आप उस समय अन्याय नहीं देखा। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, रजस्वला थी और उसके साड़ी को खींच रहा था दुशासन, उस समय आप नहीं थे बोलने वाले। फिर इसी तरह से और
अभिमन्यु को सप्त
अभिमन्यु को सात रथियों ने मिल करके मारा,
आप कहां थे
उस समय कहां थे? बड़े प्रेम से उनको बतलाया, क्रोध से नहीं, बस उनका सिर झुक गया और वो चले गए और इस तरह से वो समाप्त हुआ। यहां पर मतभेद देखो, ये मतभेद कृष्ण और बलदेव में हो क्यों, जब एक ही तत्व है सभी कुछ है। हाँ, लीला के लिए जो नर लीला है, नर लीला में सब समय एकत्व हो विचारों का, ये उचित नहीं, इसलिए थोड़ा सा मतभेद देखा जाता है। किंतु ये भी कृष्ण की इच्छा से ही, इस प्रकार से बलदेव जी का तत्व ये ब्रज में जब रहते हैं तो रोहिणी नंदन का अभिमान है बलदेव जी को, और नंद बाबा को ही अपना पिता समझते हैं। उन्होंने कहा भी ऐसा नंद बाबा को। और जब ब्रज से नंदगांव से जबकि मथुरा में प्रवेश करते हैं तो अक्रूर घाट पर, वहां पर अक्रूर को दर्शन देने के लिए जब वो स्नान करने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि रथ में बैठे हैं कृष्ण बलदेव, और भीतर में भी देखते हैं। वहीं से बलदेव प्रभु जी और कृष्ण ब्रज वाले लौट गए, और यहां से वसुदेव देवकी के पुत्र बलदेव जी मथुरा में आए, वही वहां पर पहुंचे। तो फिर बोलो यदि कृष्णा अलग हैं तो गोपियों का विरह उनको द्वारका में क्यों हो रहा? यह भी एक विचित्र लीला है, इसका भक्त लोग समाधान अपने हृदय में करेंगे। आज समय बहुत हो गया, अभी हमको गोवर्धन जाना है। एक बात कहना है, एक बार जति महाराज जी हमसे मिले मायापुर में परिक्रमा के समय। महाराज, हम लोग तो अपने ब्रह्मचारियों को कहते हैं तो वो धोती पहन करके और क्या वो काछा को फुल बंद करके चल, किंतु आपके ब्रह्मचारी लोग हैं वो काछा खोल करके मुसलमानों जैसा लुंगी पहनते हैं, तो हमको बहुत दुख होता है। सब लोग ठीक रूप में आते हैं किंतु आपके ब्रह्मचारियों को देखता हूं कि वही लोग ऐसा नहीं करते, तो बड़ी लज्जा की बात होती है। हमारे नाम पर वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि आपके ब्रह्मचारी स्वेच्छाचारी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी नियमों का पालन करके चलेंगे। विशेष अवस्था में अस्वस्थ हैं वो बात अलग है, किंतु कहीं दूसरे मठों में जाने पर इस नियम का पालन करके
मठ के अंदर भी
इस प्रकार से नियम पालन कर, और नहीं तो संन्यास ले लो, कोई बात नहीं है, मैं सहज रूप में दे दूंगा संन्यास। वंशा कल्पतरु हस्य कृपा सिंधु कृपा नाम पावन
जन्माष्टमी के लिए बोल दीजिए। जन्माष्टमी में नगर संकीर्तन,
जन्माष्टमी सब
देखो, अब जन्माष्टमी 8 दिन के बाद में है,